पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र मॉडल चुनने जाता है, मयंक दिशा को रिजाइन लेटर पर साइन करने के लिए होटल रंग महल बुलाता है। दिशा होटल रंग महल जाती है, जहां उसे सजावट से चकित होती है। वे एक कमरे में जाती है जहां मयंक उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। रुद्र अमन से उन सभी मॉडलों को प्रतिबंधित करने को कहता है। एक मॉडल रुद्र को छूने की कोशिश करती है, जिससे वो उसे धक्का देता है और अमन को बॉडीगार्ड बुलाने का आदेश देता है। बॉडीगार्ड मॉडल को एक कमरे में ले जाते हैं जहां वे उस पर हमला करते हैं। रुद्र आराम से चिल्लाता सुनता है और फिर अपने केबिन में जाता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 147। अब आगे, रुद्र का ऑफिस। कुछ देर उस लड़की की चीखें सुनने के बाद रुद्र तुरंत वहां से उठ अपने केबिन में चला जाता है। वहीं रुद्र के जाते ही अमन उन सारी मॉडल को जाने को बोलते हुए वार्निंग देते हुए कहता है, अब तुम सब जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, यहां पर जो भी हुआ वे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना आज इस लड़की की तरह तुम सब भी हो सकती हो। इसलिए बाहर जाकर अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि तुम्हारे मुंह बंद रखने से ही तुम सबका फायदा है, वरना तुम सब अब भी रुद्र सिंघानिया को नहीं जानती। तुमने अगर बाहर जाकर किसी से कुछ भी बोल दिया तो उसमें बॉस का तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन तुम लोगों की मौत पक्की है। अमन का इतना बोलना ही था कि वे सारी मॉडल डरते हुए कहती हैं, सर यहां जो भी हुआ हम किसी को भी नहीं बताएंगे, लेकिन प्लीज हमें कुछ मत करिएगा, हम आज ही इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। मॉडल की बात सुनकर अमन कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद वे सारी मॉडल डरते हुए वहां से चली जाती है। वहीं कुछ देर में वहां पर उस लड़की की चीखें बंद हो जाती हैं और तीनों बॉडीगार्ड स्माइल करते हुए कमरे के बाहर आते हैं, जिसे देख अमन बोला, अब अगर तुम सबकी ख्वाहिश पूरी हो गई तो उस लड़की को ठिकाने लगा देना। अमन की बात सुनकर वे बॉडीगार्ड्स अपना सिर हां में हिला देते हैं, जिसे देख अमन भी वहां से चला जाता है। वहीं वे बॉडीगार्ड भी उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल रंग महल। दिशा फूलों और बैलूनों से खेलते हुए उस दरवाजे के पास आ जाती है। तब जाकर उसे याद आता है कि वे यहां किस काम से आई थी, जिसे याद कर दिशा अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, ओ ओ दिशा, तू भी ना, इन सब के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि मुझे मयंक के मिलने से बाद अपना रिज्यूम जमा करने दूसरे ऑफिस में भी जाना है। अब चलो जल्दी से उससे मिल लेती हूँ, फिर निकलती हूँ यहाँ से। इतना सोच वे तुरंत उस दरवाजे को खोल थोड़ा सा अंदर आती हैं, मगर अंदर आते ही उसके ऊपर गुलाब की ढेर सारी पंखुड़ियाँ गिरने लगती हैं, जिसे देख उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वे अपने हाथों को फैलाए गोल गोल घूमने लगती हैं। कुछ देर यूं ही घूमने के बाद वे रुक जाती है और अंदर का इतना खूबसूरत नज़ारा देख बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि वे रूम इतनी ज्यादा खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था कि दिशा अपने कदम रूम के अंदर बढ़ाने से खुद को रोक ही नहीं पाती। वे रूम के अंदर जाते हुए उन सारी चीजों को छूती है और उन्हें देखने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये सब गलत है, क्योंकि वे सब उसके लिए नहीं है बल्कि किसी और के लिए है, और वे किसी और के लिए की गई मेहनत को खुद नहीं फील करना चाहती थी। वे उस रूम को देख कहती हैं, लगता है मैं गलत रूम में आ गई हूँ, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। इतना सोच वे जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, वैसे ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वहीं दिशा जैसे ही किसी को अपने हाथों को पकड़ता हुआ देखती है तो वे डर जाती है और तुरंत पीछे पलट अपना हाथ छुड़वा उस इंसान को देखने लगती है जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मगर जैसे ही वे अपने सामने खड़े देवांश को देखती है, वे हैरान हो जाती है कि देवांश यहाँ क्या कर रहा है। इसी के साथ साथ देवांश को देखते ही उसकी आंखों के सामने उस रात का सीन भी आ जाता है, जब देवांश ने उसके होठों पर जबरदस्ती किस किया था और वे उस किस के भी बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस चीज को याद करते ही दिशा, जो अभी कुछ देर पहले काफी खुश थी, उसकी खुशी एक ही पल में कहीं खोसी जाती है और उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता है। दिशा देवांश को यहाँ देख तुरंत वहां से मुड़ जाने लगती है, जिसे देख देवांश दिशा का हाथ दोबारा पकड़ उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, गुड गर्ल, थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो, मुझे तुमसे कुछ कहना है जो मैं काफी दिनों से तुमसे कहना चाहता था। देवांश की बात सुनकर दिशा बोली, सर मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी, इसलिए मुझे जाने दीजिए। दिशा की बात सुनकर देवांश बोला, गुड गर्ल, प्लीज थोड़ी देर, उसके बाद तुम खुद यहाँ से नहीं जाना चाहोगी। देवांश की बात सुनकर दिशा एक टक देवांश को देखने लगती है। वहीं देवांश दिशा को देखते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। वहीं दिशा, जो यहाँ से जाने के लिए दोबारा अपने कदम पीछे लेने ही वाली थी, देवांश को इस तरह घुटनों के बल बैठता हुआ देख हैरान हो जाती है और उसके कदम अपने जगह अपने आप ही रुक जाते हैं, क्योंकि उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि देवांश सिंघानिया उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है, क्योंकि जिस देवांश सिंघानिया को वे जानती थी, वे सिर्फ लोगों को घुटनों के बल बैठाना जानता था, मगर खुद कभी किसी के सामने नहीं झुकता था। इसलिए वे देवांश को देखते हुए कहती हैं, सर आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज ये सब मत कीजिए। दिशा को ऐसा लग रहा था कि देवांश उसके उस रात के किए की माफी मांगना चाहता है, इसलिए घुटनों के बल बैठा हुआ है। जिसे देख वे जैसे ही कुछ बोलने को हुई, वैसे ही देवांश कुछ ऐसा करता है जिसके दिशा की गलतफहमी एक पल में ही टूट जाती है और वे अविश्वास से देवांश को देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में रूही इस समय लाइब्रेरी में थी और कुछ किताबें ढूंढ रही थी। वे यहाँ अकेले ही आई थी क्योंकि उसने परी और अर्जुन दोनों को लाइब्रेरी आने को बोला था, मगर लाइब्रेरी का नाम सुनते ही वे दोनों वहां से भागते हुए उसका कैंटीन में इंतजार करने को बोल चले जाते हैं। इसलिए रूही को अकेले ही लाइब्रेरी में आना पड़ता है क्योंकि उसे एक टॉपिक समझ में नहीं आ रही थी और वे उसी के रिलेटिव उस बुक को ढूंढ रही थी ताकि उसे उस टॉपिक को समझने में आसानी हो। रूही उस बुक को ढूंढ ही रही थी तभी एक बुक जो थोड़ा साइड में ही था, वे बुक रूही के ऊपर गिरने लगता है, जिस पर रूही का कोई ध्यान नहीं था क्योंकि रूही का सारा ध्यान अपने बुक को ढूंढने में था, जिस वजह से वे बुक रूही के ऊपर गिरने वाली थी। मगर वे बुक रूही के ऊपर गिर पाती तभी कोई आकर रूही को एक ही झटके में अपनी तरफ खींच लेता है।
वहीं किसी की यूं अचानक खींचने की वजह से रूही भी खुद को संभाल नहीं पाती और तुरंत जाकर उस इंसान के सीने से लग जाती है। वहीं वे इंसान भी रूही को कस कर अपने सीने से लगा लेता है। पता नहीं क्यों, मगर रूही के ऊपर इतनी ढेर सारी बुक को गिरता हुआ देख वे काफी डर गया था, इसीलिए वे रूही को अपने सीने से लगा उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है।